ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोहिष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनात् रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधाकृष्णपादाम्बुजसहगना ललिता श्री विशाखा नितांश्च पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्त्यावतार भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बित भुजौ कनकवदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वेदान्नो धरते जगन्ने वहते भूगोल मुद्वेव्रते दैत्यं दारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते फलं कलयते कारुण्यमातन्नते म्लेच्छान् मूर्च्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तृण्वन्ति देवैस्तवे ऋग्वेदे साङ्गक्रमोपनिषदे गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तगणः विदुसुरासुरगणा दिवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मुखं करोति वाचालम् பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத் கிருபா த்வமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால பஜ முரளி மனோஹர நந்தலால பஜ முரளி மனோஹர நந்தலால பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால பஜ முரளி மனோஹர நந்தலால பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால அபய சரணாரவிந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத கீ ஜெய கிரந்தராஜ ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீ ஜெய ஸ்ரீமத் பாகவதம் சப்தம ஸ்கந்த தசமா அத்யாய ஸ்லோக நம்பர் 14 ய ஏதத் கீர்த்தயன் மைஹம் ய ஏதத் கீர்த்தயன் மைஹம் த்வயா கீதமிதம் நரஹ த்வயா கீதமிதம் நரஹ த்வாங் ஜமாங் ச ஸ்மரன் காலே த்வாங் ஜமாங் ச ஸ்மரன் காலே கர்ம வந்த்யாத் ப்ரமுச்யதே கர்ம வந்த்யாத் ப்ரமுச்யதே ய ஏதத் கீர்த்தயேன் மைஹம் த்வயா கீதமிதம் நரஹ த்வாங் ஜமாங் ச ஸ்மரன் காலே கர்ம வந்த்யாத் ப்ரமுச்யதே ய ஏதத் கீர்த்தயேன் மைஹம் த்வயா கீதமிதம் நரஹ த்வாங் ஜமாங் ச ஸ்மரன் காலே கர்ம வந்த்யாத் ப்ரமுச்யதே
Yeah. माताएं and proffered by His Divine Grace S.E. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai ho. Jo vyakti tumhare tatha mere karjyon ka sadeva smaran karta hai. Tumhare shabd ka arth yahan hai, Bhagavan Prahlad Maharaj ji se keh rahe hain. Tumhare shabd ka arth Prahlad ji और मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है वो कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है तात्पर्य यहां पर कहा गया है कि जो कोई प्रह्लाद महाराज के कार्यकलापों का और उनसे संबंधित नृसिंहदेव के कार्यकलापों का कीर्तन तथा श्रवण करता है यह धीरे धीरे समस्त कर्म बंधन से छूट जाता है जैसा कि भगवत गीता 2:15 और 2:56 में कहा गया है यंग ही न व्यथयन्ति ते एते पुरुषं पुरुषर्षभ समुद्रः समह दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन जो व्यक्ति सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर बना रहता है वो निश्चय ही मुक्ति का पात्र है दुखे सोनोद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भयक्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते जो तीन तापों के होते हुए भी विचलित नहीं होता जो सुख से फूल नहीं उड़ता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है वो स्थिर चित्त वाला साधु मुनि कहलाता है भक्त को विषम परिस्थिति में न तो दुखी होना चाहिए न भौतिक ऐश्वर्य में अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए भौतिक जीवन का कुशल प्रबंधन यही है क्योंकि भक्त जानता है कि किस तरह कौशल पूर्वक व्यवस्था की जानी चाहिए इसलिए वो जीवन मुक्त कहलाता है भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं यह यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय हो जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करता है कृष्ण की सेवा करता है ओ इस भौतिक जगत में ही रहते हुए मुक्त पुरुष है भले ही वो तथा कथित अनेक भौतिक कर्मों में क्यों न लगा रहे जीवन की किसी भी परिस्थिति में भक्त में निरंतर लगे रहने के कारण भक्त समस्त भव बंधन से मुक्त होता है भक्ति पुनाति मन निष्ठा सोपाका नपि संभवात कोई भले ही मांसभक्षी परिवार में क्यों उत्पन्न न उत्पन्न हो किंतु भक्ति में रत होने पर वो शुद्ध हो जाता है भागवत 11, 14, 21 में श्री जीव गोस्वामी इस श्लोक को अपने समर्थन में उद्धृत करते हैं कि जो कोई प्रहलाद महाराज के शुद्ध जीवन तथा कार्य कलापों का कीर्तन करता है वो भौतिक कार्य कलापों से मुक्त हो जाता है। यह एतद् कीर्तयेन महिहम त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरण काले कर्म बंध्यात् प्रमुच्यते। प्रहलाद महाराज जैसे भक्त बड़े दुर्लभ होते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे भक्त भगवान के असीम कृपा के पात्र होते हैं, स्पेशल मर्सी, सभी नहीं हो सकते। फिर भी जब कोई प्रहलाद महाराज जैसे स्मरण करता है, प्रहलाद महाराज स्मरण भक्ति के उदाहरण है। पर जब हम विष्णु स्मरण में जीव लग जाता है उससे तीन चीज की निवृत्ति हो जाती है। पहली बात है कामरूपी शत्रु का दमन होता है। विक्रीडितम ब्रजवधु भुरीदम च विष्णु श्रद्धानुतनु श्रृणुयेद वर्णयेद यह भक्तिम परांग भगवती प्रतिलभ्य काम। ये भगवत चर्चा, भगवत कथा का श्रवण जब भक्तों के मेल में, भक्तों की समागम में बैठ करके भक्त भगवत कथा का वर्णन और श्रवण करते हैं, उससे बढ़कर के आनंद कोई भी सुख में नहीं हो सकता। वो सर्वोपरि आनंद है। श्रवण और कीर्तन भक्तों की संगम है। सो विक्रीडितम ब्रजवधु, ब्रज की अंगनाएं, ब्रज की गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की जो अनन्य लीला जब कोई श्रवण करता है उससे वो श्रवण माध्यम से ही कामरूपी जो शत्रु है वो धीरे धीरे नाश हो जाता है। एक ही मंत्र है भगवान की कथाओं का श्रवण करना। भगवान श्री कृष्ण के कथाओं का श्रवण करना, पर इसकी श्रवण बा इसकी पीना कैसे ना। भगवत जन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ये कथा को बांटते रहते हैं। पिबंती भागवत आत्मन सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु संवृतम श्रवण पुटेशु संवृतम पुनंतिते विषय विदुषिता स्वयं ब्रजंती तच्चरण सर्वहांतिकम। जब महात्मा जन भगवान के इन चरित्रों की गाथा का वर्णन करते हैं सौभाग्यवान व्यक्ति वो है जो अंजलि भर भर के ये कान के माध्यम से वो कथाओं को पान करता है। और ये कथाओं को कर्णरंध्र से जब हम पान करने लगते हैं फिर हृदय के अंदर जितने विकार है उसका नाश होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये जो षडरूपी सर्प व शत्रु मनुष्य को हर पल विपदाग्रस्त करते हैं ये केवल श्रवण से ही जाता है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रवण में बहुत फल है। और विष्णु स्मरण में तीन चीज की निवृत्ति होती है। जब जीव भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के स्मरण में लगता है, स्मर कहते हैं काम को, काम रूपी शत्रु का पहले दमन होता है। मदन मनमत्थ मार प्रद्युम्न मिनकेतन कंदरप दर्प को अनंग काम पांच सर स्मर। ये कामदेव के पास पांच बाण होते हैं काम के। जब ये पंच बाण काम छोड़ देता है जीव के प्रति, जीव अस्थिर हो जाता है, काम वासना में फिर भटक जाता है, भगवत भक्ति से दूर हो जाता है। काम रूपी शत्रु से जीव को दूर रहना चाहिए और कामरूपी शत्रु को दमन करने के लिए एक ही मंत्र है विक्रीडितम ब्रजवधु भूरिदम च विष्णु श्रद्धानुत अनुसरणयात् श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ ये कथा कीर्तनों का श्रवण करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जैसे भक्त आप सभी प्रहलाद से कमी नहीं हो, अपने को कभी छोटा नहीं समझना। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उद्धरिलो तार साखी जगाई माधाई भाई रे तार साखी जगाई माधाई। पापी और तापी जितने भी थे पर हरि नाम में सभी की उद्धार हो गया। इसलिए भगवान भी वचन देते हैं भक्तों को। भगवान ने गीता में कहा अहम सच मम प्रिय, वो भक्त मुझे सदैव प्रिय है और मैं भी उस भक्त को सदैव प्रिय हूं। पर कौन ना जो सदैव मेरे कथा कीर्तन में लगा रहता है, उसी से आनंद लेता है। अगर उसके पास कोई महाधन है, कुछ धन दौलत है, वो एक ही धन दौलत उसके पास है कृष्ण नाम। भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं कृष्ण कृष्णाय कृष्णेति यो मां भज्यति नित्यशः जलम भित्वा यथा पद्म नीरयत्यारयाम्यहम्। जिस प्रकार कमल के फूल पानी के अंदर से पंख से उत्पन्न होकर के पानी के ऊपर खिल जाता है, कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मैं जीव को जो मेरे भजन में लगा हुआ है अगर वो नरक में भी गिर जाए उसको मैं उसी प्रकार उठा लेता हूं जिस प्रकार कमल के फूल पानी को भेद करके पानी के ऊपर खिल जाता है, ऐसे ही मैं रक्षा करता हूं, भगवान ने कहा। इसलिए अगर संपत्ति भक्त का कोई है, न धनम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा न धनम सॉरी न धनम न जनम न सुंदरी कवितांग जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवे तद्भक्ति अहेतुक त्वयि। कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके अहेतु की भक्ति चाहिए। ऐसी भावनाओं में युक्त हो करके जब भक्त निष्काम भाव से भगवत भक्ति परायण हो जाता है तो फिर हरिनामी तो एकमात्र संपत्ति उसी के लिए बाकी रह जाता है। पर ये हरिनाम जीव को क्या कराने में समर्थ है? ना कल्याणानाम निधानम कली मलमथनम। ये हरिनाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये कलिजुग की पतित पावन मंत्र है और जब व्यक्ति ये हरिनाम की सहारा लेता है कल्याणानाम निधानम, ये सर्व प्रकार से कल्याण करता है, सर्व प्रकार से कल्याण करता है अर्थात पवित्रता वातावरण जीव के जीवन में भर देता है। कल्याणानाम निधानम कली मलमथनम, और ये हरि नाम ही है ये जो घोर कलिकाल है इसकी जो बुराइयां हैं वो सभी को जला करके राख कर देता है। कलिजुग बहुत अच्छा है। द्वैपायन मुनि व्यासदेव कहते हैं सभी युगों से कलिजुग उत्तम है। बोले क्यों? ना यत्फलम नास्ति तपसा नौ योगे नौ समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलियुग में भगवान केशव की कोई कीर्तन कर ले, यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता जीव को, ये तपस्या का फल नहीं है। यत फलम नास्ति तपसा, नौ योगे, बड़े बड़े योग से जो प्राप्ति नहीं होता, नौ योगे नौ समाधिना, समाधिस्थ हो जाने के बाद भी योग की परम सिद्धि, अष्टांग योग की परम सिद्धि, हाईएस्ट सिद्धि जो है वो है समाधि। समाधिस्थ जब व्यक्ति हो जाए, बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं जाता, अंदर से सब कवाटें बंद हो जाता है, ध्यानस्थ होकर के भक्त बैठता है, पत्थरवत हो जाता है। तो ना यत फलम नास्ति तपसा, न योगे न समाधिना, समाधि में भी ये फल की प्राप्ति नहीं होती। तत्फलम, वो फल जो समाधि में प्राप्त नहीं होता, जो तपस्या से प्राप्त नहीं होता, जो योग से प्राप्त नहीं होता, वो फल लभते सम्यक, थोड़ी सी प्रयास में वो बड़ा फल प्राप्त हो जाता है जीव को। कलौ केशव कीर्तनात्, कलियुग में जब जीव कीर्तन में लग जाता है, भगवत परायण हो जाता है, तो जो बड़े से बड़े फल है वो छोटे प्रयास में जीव को प्राप्त होता है। इसलिए कल्याणानाम निधानम कली मलमथनम, कली काल की, घोर कली काल के जो बुराइयां है सब नाश होता है। कली काल मथनम पावनम पावनानम, जो पवित्र हैं, हर प्रकार से पवित्र हैं, उनको भी ये हरि नाम पवित्र कर देता है। कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानम पाथेयम यन्न मुमुक्षु सपद परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। मुमुक्षु शब्द का अर्थ है जो संसार बंधन से मुक्ति को पाने के लिए इच्छा रखते हैं, वो भी ये हरिनाम के पथ पर चल पड़ते हैं। पाथेयम इसी पथ के पथिक होते हैं। विश्रामगारमेकम कविवर वचसाम सज्जनम सज्जनानाम, जो सज्जन व्यक्ति हैं, साधु व्यक्ति हैं, इसी नाम को जपते जपते जब थक भी जाएं, ये हरि नाम में ही विश्राम लेते हैं। और ये हरि नाम धर्म द्रुमस्य प्रभवतो, ये हरि नाम महाद्रुम के समान है, ये धर्म के परम शिखर में, धर्म जिसके ऊपर टिका है वो हरि नाम ही है। धर्माद्रुमस्य, द्रुम कहते हैं जो हजार हजार साल से जो वृक्ष बा पेड़ खड़े हैं, 5000 साल से वो द्रुम है। धर्म द्रुमस्य, ये हरिनाम रूपी धर्म के ये द्रुम है, द्रुम वृक्ष है। और प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम और कृष्ण नाम। भूत शब्द का अर्थ है जीव के लिए, ये जीवात्माओं के लिए, ये भवसागर में, भव संसार में हरि नाम ही एकमात्र आधार है। इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी की जन्म हुआ, सुखदेव गोस्वामी दीर्घ 16 साल माता गर्भ में रहे, जिन्होंने सुखदेव की मुखारविंद से दैपायन मुनि व्यास देवी की जो सारभूत श्रीमद् भागवत में सभी शास्त्रों का निचोड़, वो सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निश्रित हुआ। वो सुखदेव गोस्वामी जब माता गर्भ में थे, तब उन्होंने सत्य युग का ये मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको व्याख्या करते हुए ईच अक्षर से एक एक श्लोकों का पाठ करते हैं। कुछ चर्चा उसी के ऊपर करता हूं। भक्ति जीवन की सूत्र है ओम इति ज्ञान मात्रेण रोगाजीर्णेन निर्जितः काल निद्राम प्रपन्नोऽस्मिन् त्राहि मां मधुसूदन। ओम न न देवर विद्यते सन्यात् तुमेव शरणं मम पाप पंके निमग्नोऽस्मिन् त्राहि मां मधुसूदन। हे मधुसूदन भगवान कृष्ण कृपया त्राही बचा लीजिए, त्राण कर लीजिए भवसागर से। बोले नौ देव विद्यते का सॉरी पाप पंके निमग्नोऽस्मिं त्राही मां, ये संसार रूपी पंक में गिर पड़ा हूं ठाकुर जी। पंक शब्द का अर्थ है जब जब कोई व्यक्ति पंक में गिर जाए वो बचना चाहता है, तो पकड़े तो किसको पकड़े, कोई कठिन वस्तु हो तो हम पकड़ के रुके ना। पंक कठिन नहीं होता, एकदम तरल पदार्थ होता है, आप जितना चाहोगे ऊपर उठने के लिए इतना नीचे धस जाओगे। उसी प्रकार ये संसार में बहु प्रकार की ऐसी ही वस्तु है जो जीव उसमें आसक्ति में फंस जाता है, आसक्ति रूपी मगरमच्छ के कवल में आ जाता है। नौदेव विद्यते पाप पंके निमग्नोऽस्मिन् त्राहि मां मधुसूदन। नौ के बाद आया मो, मोहित मोहजालेन पुत्र दारा गृहादिषु तृष्णाया पिड्यमानोऽस्मिन् त्राहि मां मधुसूदन। मोहित मोहजालेन पुत्र दारा गृहादिषु, पुत्र संतान, दारा मतलब पत्नी, पुत्र दारा गृहादिषु घर दौलत व्यवसाय इत्यादि, ये मोहरूपी जाल है जो जीव आसक्त होता हुआ उसमें फंस जाता है। अहो असाधु अनुष्ठितम अहम इंद्रिय अविद्या रचित विषय विषयांध कुपे तदलमल मुष्या वनिताया विनोद मृगम मां धिक 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 इति ग्रहयांचकार। ए मूढ़, पता नहीं चला कब ये खिलौना के पीछे माया मृग के पीछे नाचते नाचते उम्र ही बीत गया। अहो असाधु अनुष्ठितम अहम इंद्रिय, ये इंद्रियों की बस में आकर के इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए कामिनी के पीछे भागता हुआ वो क्रीड़ा मुर्ग मुझे नचाते नचाते बाल सफेद हुआ, दांत भी गिरने लगे। अंग अंगलितम पलितम मुंडम दसन विहीन जातम तुंडम, पता नहीं चला कब उम्र बीत गया। मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, यदि वो समय मैं गोविंद की गीत में लगा लेता तो मेरा और भी कल्याण हो सकता था। इसलिए मोहित मोहजालेन, सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भ में प्रयार करते हुए कहते हैं मोहित मोहजालेन पुत्र दारा गृहादिषु तृष्णाया पिड्यमान अस्मिन्। तृष्णा ये जो मोह है वो कैसा है ना, मृगमरीचिका के समान तृष्णा, मृग तृष्णा। रेगिस्तान में जब मृग पानी की प्यासा होकर के पानी के अन्वेषण करता है उसे दिखाई पड़ता है क्योंकि मरुभूमि में केवल रेती ही रेती होता है, जब वायु बहती है और उसमें लाइट पड़ता है ऐसे लगता है कि पानी की नदी दूर पर बह रही है और मृग उस पानी को पीने के लिए तरसते तरसते दौड़ता है और जब उस स्थान में पहुंचता है और वो पानी इतने ही दूर आगे दिखाई पड़ती है और ऐसे भागते भागते गर्मी में थक करके वो तड़पता हुआ प्राण को त्यागता है। ऐसे ही ठाकुर जी ये संसार है, आपने संसार को ऐसे बना दिया है। एक इच्छा को पूर्ति करने के लिए जब मैं भागता हूं उससे दस इच्छा की और जन्म ले लेता है, फिर उनको जब पूरा करते करते जाता हूं आशायां बद्धते लोकान कर्मणां अनुबद्धते आयुक्षयम् न जानामि तस्मात् जागृहि जागृहि। हे मानव कब तक सोता रहोगे, देखो देखो एक इच्छा को पूरा करते हुए दस इच्छा की जन्म हुई, दस इच्छा को पूरा करते हुए सौ साल बीत गया, समय नहीं रहा, अंतकाल आ गया। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाल महादुखम तस्मात जागृही जागृही। जन्म लेना सबसे बड़ा दुख है, माता गर्भ में जन्म लेते समय जीव का कंठ जो है वो रुद्ध हो जाता है, चित्कार करता है, त्राहिमंग त्राहिमंग मचाता है, बहुत कष्ट है। जन्म दुखम, जन्म लेना भी एक दुख का कारण है। जन्म दुखम जाया दुखम, पुत्र संतान पत्नी पति ये सब भी एक दुख के कारण है। जाया दुखम जरा दुखम, बुढ़ापा भी एक दुख का कारण है, बुढ़ापा में चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, और अंतकाल तो महादुख है। ऐसे शास्त्र में वर्णन है हजारों बिच्छू डंक मार दे एक साथ जितनी ज्वाला होता है, जब व्यक्ति के सामने मृत्यु उपस्थित होता है शरीर में इतना ही पीड़ा होता है। हजारों बिच्छू की चोट से जिस प्रकार लगे ऐसे ही लगता है जीव को, महादुखम। इसलिए सभी की निवृत्ति कृष्ण नाम में है। प्रहलाद जी से महाराज भक्त जभी जभी कोई विपद आया वो केवल भगवान विष्णु के ही स्मरण में लगे रहे। सम्मोहित मोहजालेन पुत्र धारा गृहादिषु तृष्णाया पिड्यमानोऽस्मिन् प्राहिमांग मधुसूदन। ओम नमो भ भक्तिहीनस्य दीनस्य भक्तिहीनस्य दीनस्य दुःखाशोका तुरं प्रभु अनाश्रयम् अनाथं च त्राहिमं मधुसूदन। ठाकुर जी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख के कारण बहुत भटक गया हूं। भगवान गीता में भी इसकी संदर्भ में बोलते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मुहेन भारत सर्वभूतानि संगमोह स्वर्गे जान्ति परम तपः। ये इच्छा डिजायर द्वेष एनवियसनेस ये दोनों कुत्तों की भांति मनुष्य की देह में लड़ते रहते हैं, मनुष्य की अच्छे बुद्धि को हरण करते रहते हैं। हाँ? एक बार की कथा, महात्मा गांव में आए, पुण्य तिथि था, गांव में एक कृषक फार्मर था, वो ये सोचा जे मेरे खेती में मैं एक नया कुआं कटाया हूं उसमें जो पानी पहली बार निकलेगा संत जी उसमें स्नान करे तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। संत जी महात्मा जी को बुलाया जे पुण्य तिथि में आप स्नान कीजिए। महात्मा जी बोले मैं आऊंगा। सबरे पांच दिन के बाद वो पुण्य तिथि आया तो उससे पहले फार्मर पहुंच गया, कृषक पहुंच गया अपनी कुआं के पास और देखा कुआं का पानी दुर्गंध में भरा हुआ है। तो उसने बहुत जोर से पुकारा अपनी साथी को, बोले साथी ये बताओ मेरा कुआ का पानी इतनी दुर्गंधित कैसे हो गया? बोले तूने तो कुआ कटाया, पैसा बहुत था, इतना सुंदर कुआ कटाया, पानी भी बहुत अच्छा निकला, पर कुआ का देखभाल नहीं किया तूने। जब तुम नहीं थे दो कुत्ते लड़ रहे थे और वो कुआ के अंदर गिर गए और सड़ गया, तभी ये कुआ का पानी दुर्गंधित हो गया। तो बोले फिर महात्मा जी को मैं स्नान कैसे कराऊंगा? तो उसने 10-15 घंटा लाग के पूरा पानी को निकाला, फिर भी गंध नहीं गया। थक करके महात्मा जी के पास आ गया और बोला, महात्मा जी क्षमा चाहता हूं, कल सवेरे आप जाने वाले हो, मेरा कुआं में दो कुत्ते गिर गए और वो मर चुके हैं, इसलिए पानी सड़ चुका है और दुर्गंधित पानी में आप स्नान कैसे करोगे? परंतु बहुत परिश्रम किया, पानी निकाल निकाल के थक गया, पर कुआ का दुर्गंध गया नहीं। बोले पानी तो निकाला वो सब ठीक है, वो मरे हुए सड़े कुत्ते को निकाला? बोले उसको तो नहीं निकाला, फिर कैसे पानी शुद्ध होगा? तो इच्छा और द्वेष रूपी जो शत्रु है उससे अगर हम बाहर नहीं आए तो भगवत भजन कैसे हो सकता है? इसलिए भक्ति ही नश्यति नश्य दुख शोकातुरम प्रभु अनाश्रयम अनाथम च। ठाकुर जी कोई और आसरा नहीं है, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर ममैव गतिस्तम 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 गतिस्तम। तुम ही ठाकुर जी एकमात्र गति हो, ना पिता रक्षा करेगा, ना माता रक्षा करेगी, ना भाई भगनी सहोदर पत्नी, ना मेरा व्यवसाय मुझे इस विषम स्थिति में रक्षा करने में समर्थ है। केवल एकमात्र तुमेव शरणं मम, अन्यथा शरणं नास्ति। इसलिए ठाकुर जी अनाश्रयम, मेरे पास कोई आश्रय नहीं है तुमको छोड़ करके, और अनाथ आप ही नाथ हो, मेरे रक्षक हो, और कोई रक्षक भी नहीं है। ओम नमो भ ग गतागते न श्रंतोस्मिन् दीर्घ संसार वर्त्मसु। दीर्घ संसार, ये संसार को पार होना संभव नहीं है ठाकुर जी, ये कुत्तों की पूंछ पकड़ करके समुद्र को पार होने की प्रयास जैसे होगा। इसलिए वत्स पदम परम पदम, जब जीव भगवान के चरण में समाय जाता है, मन को लगा लेता है, ये दीर्घ संसार बहुत बड़ा दुस्तर जो समुद्र है भौतिक जगत का, वो भी बछड़े की पैर के बराबर बन जाता है, ठाकुर जी की कृपा से ही संभव हो सकता है। इसलिए त्राहिमांग मेरी रक्षा करो ठाकुर जी। सुखदेव जी कहते हैं, ओम नमो भगव बहो बाही मया दृष्ट्वा जोनि द्वार पृथक पृथक गर्भावासे महत दुखम त्राहिमांग मधुसूदन। हे ठाकुर जी, ये 84 लाख योनियों में, योनि माता के गर्भाश्रय को कहा जाता है बा प्राइवेट पार्ट को, तो माता की गर्भ में कितनी बार कितने जन्म में जन्म लिया? बहोबाही मया दृष्ट्वा योनि द्वारा पृथक 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 योनियों में मेरा जन्म हुआ, गर्भावास है फिर गर्भ में रहा, महत दुखम बहुत दुख पाया। जब माएं 6-7 महीना की गर्भवास में होती है, उनको तीखा चटपटी खाने की आदत इच्छा होती है, तो जब कभी मिर्चा तो कभी इधर उधर की खा लेती है। ठाकुर जी मुझे गर्भ में बहुत कष्ट होता था, गर्भवासे महत दुखम त्राही मांग मधुसूदन, उससे मेरी उद्धार कीजिए। ओम नमो भगवते। तेन देव प्रपन्नोस्मिं त्राणार्थं मत्परायण दुखारणव परित्राणात त्राही मांग मधुसूदन। ये दुख का सागर में गिरा हुआ हूं, ये दुख का सागर, यहां सुख लेश मात्र भी नहीं है। सुख की इच्छा करते करते जीवन बिता, पर सुख कहां आया? सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दुखालयम, भगवान ने गीता में ये डिक्लेयर किया ये भौतिक जगत के लिए, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का सागर है, दुखा दुख का स्थान है और अशाश्वत है। कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, टिकता नहीं है, खिसक जाता है। संसार उसी का नाम है जो खिसकता है, अब है बाद में नहीं है, परिवर्तनशील है, उसी का नाम संसार है। और ये संसार में सुख कैसा? सुख तो केवल गोविंद नाम है और सब दुख का कारण है। सब दुख का कारण है। बा बाचयामि अथो नमत्त प्रणमामि तवाग्रत जरा मरण भूतेषु त्राहेमं मधुसूदन। बाचयामि यथोन्मत्त प्रणमामि तवाग्रत, हे ठाकुर जी ये जरा मरण से मैं बहुत भयभीत हूं, बुढ़ापा और मृत्यु में मैं घबरा गया हूं, इसलिए तवाग्रत तुम्हारे चरण पर मैं प्रणाम करता हूं, कृपया कृपा करके मेरी रक्षा कर लो। त्राहिमांग मधुसूदन था। ओम नमो भगवते वासु सुकृतं न कृतं किंचित दुष्कृतं च कृतं मया संसार धारिमग्नोऽस्मिं त्राहिमं मधुसूदन। इसी प्रकार चलते चलते ये संसार की एज में धार पर मैं आ चुका हूं, अब गिर पड़ूंगा, इससे पहले ठाकुर जी मेरे रक्षा कर लो। बाचयामि यथोन्मत्त प्रणमामि तवाग्रत जरा मरण भूयते स्मिन् त्राहिमांग मधुसूदन। उसके बाद आता है यत्र यत्र च जातोस्मिन् स्त्रीषु वा पुरुषेषु च तत्र तत्र अचला भक्ति देही मांग मधुसूदन। इतने सूत्र में सुखदेव जी त्राही मांग मधुसूदन का, मेरे रक्षा करो, किंतु अंतिम चरण में सुखदेव जी क्या कहते हैं? ये मधुसूदन सूत्र कहा जाता है। गर्भ में फलश्रुति में सुखदेव गोस्वामी गर्भ से ही इन स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। यत्र यत्र चजातोस्मिन् स्त्रीषु वा पुरुषेषु च। ठाकुर जी भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे एक स्त्री पुरुष के ओर और एक पुरुष स्त्री के ओर आकर्षित हो जाता है। कभी कभी तो वो आकर्षण इतना कठिन हो जाता है व्यक्ति अपनी प्राण को भी नौछवर कर देता है, मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही स्ट्रांग आकर्षण आपकी ओर होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी इसकी एक एक व्याख्या आता है, अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतराच्युदारता प्रियं प्रियैव विशितं विशीर्णः मनो अरविन्दाक्ष दादृक्षति त्वाम्। अजात पक्ष, हे ठाकुर जी जब घोंसला में वो छोटे छोटे पक्षी के बच्चे जिनको पंख आया नहीं हो, उड़ नहीं सकते, वो केवल मां की आगमन का प्रतीक्षा करते हैं। मां आकर के खाद्य उनकी चोंच में डाले। आप सभी भारतवर्ष देख सकते हो, हाँ, जब मां उड़ के आती है तो बच्चे एकदम चीची करके उड़ते हैं और उनकी मुंह खुल जाता है और मां उसमें खाद्य भर देता है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, खग 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 शब्द का अर्थ है विहंग पक्षी, खगा जैसे कि छोटे पक्षी जिनको पक्ष आया नहीं हो, पंख हुआ नहीं हो, वो अपनी मां की प्रतीक्षा में बैठे रहती है, ध्यान से मां आएगी। ऐसे ही मेरा मन ठाकुर जी आपके चरण में कब लगेगा। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा बच्छतरा क्षुदार्ता। जब मां गाय गोगोष्ठ से, हम सभी गांव से जब गयाला लोग आते हैं तो सभी गाय हम पिटा देते हैं, वो गाय को लेकर के चराने जाते हैं और बछड़ा घर में बंधा रहता है। पर संध्या की समय हुआ, गोधूली का समय हुआ, मां वापस आती है, स्तन में खीर भर चुका है और मां कुहाट छोड़ती है। देखा, जब बच्चे को गाय पुकारती है बड़े सुंदर मां, तो बच्चा जब बंधा होता है रस्सी पर, वो उसको मतलब तोड़ देना चाहता है और अपनी मां के पास दौड़ जाना चाहता है। फिर मां आते आकर के जब परिवार के व्यक्ति पहले बछड़ा को छोड़ते हैं, फिर वो मां के स्तन से खीर पी करके कभी कभी एक नाद मारता है, उसको लाल सर के ऊपर स्तन को प्रहार करता है तो फिर खीर बहुत सुंदर गिरता है, फिर पी लेता है। ऐसे ही ठाकुर जी बच्छतरा क्षुदारता, प्यासा क्षुदा में आतुर हुआ वो बछड़ा जैसे मां की प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसा ही मेरा मन आपके चरण में कब लगेगा। और प्रियम प्रियैव विशितम विसरणा, प्रियम प्रिया मतलब नवविवाहित वधु, जैसे पति के आगमन में बाहर गए हुए पति वो अपनी गवाक्ष विंडो के सामने खड़ी होकर के निहारती है, अब मेरे पति का समय हो गया, ठाकुर जी ऐसा ही मेरा मन आपके चरण में कब लगेगा। और आप सभी बहुत महान हो, प्रभुपाद जी की सेवा में हो। प्रभुपाद ने ऐसा एक बीज भक्ति का इस स्थान पर डाला, राधा राजबिहारी मंदिर अनोखा मंदिर है, इसकी कंपैरिजन किसी मंदिर से नहीं हो सकता और ऐसे गुरु की कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। कलियुग के लिए ये स्पेशल मर्सी श्रील प्रभुपाद, जीव जगत के लिए, और हम सभी भाग्यवान हैं जो इस सोसाइटी में जुड़े हुए हैं। अरे जो आज नए हो काल आप पुराने हो गए, भविष्य तो आप ही के कंधे पर है ना ये सोसाइटी, इसीलिए चिंता नहीं करो। सुख भी आता है और दुख भी आता है, ये जीवन का एक पहेली है, सुख में अधीर नहीं होना और दुख में भी संतुलन नहीं खोना, दोनों स्थितियों में मजबूत बन करके ठाकुर जी की सेवा में लगे रहना। ये श्लोक तो यही सिखाता है ना, जे जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये श्लोक में जे नृसिंह भगवान की चरित्र और भक्त की चरित्र जो भी गाता है वो भौतिक बंधन से मुक्ति को लाभ करने में समर्थ है। और नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को ही कहते हैं, क्योंकि तुमने मेरे सदैव स्मरण करता है, मेरे कार्यों को, मेरे गुण को वर्णन करते हो, इसलिए तुम भौतिक बंधन से अपने आप में मुक्ति पा लेते हो। उसी प्रकार आप सभी अभी प्रहलाद महाराज जी के पदांकन में चल रहे हो, पद के अनुसरण कर रहे हो, हाँ, भगवान के नामों का उच्चारण करते हो, भगवत भक्ति की अभ्यास करते हो, गीता पढ़ते हो, श्रीमद् भागवत पढ़ते हो, सुंदर सुंदर भक्तों की संग करते हो, ये सभी भवबंधन से मुक्तिकारी है। सो आप सभी महान हो, आप सभी महान हो, आपकी एक एक सेवा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। और भगवान तो उस भक्त के लिए पागल होते हैं, भक्त के लिए पागल होते हैं। अगर हमने कोई चीज को छोड़ भी दिया, संसारी लोगों कहते बहुत बड़ा पाप किया, क्योंकि तूने छोड़ दिया, पिता को छोड़ा, माता को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, धन दौलत को छोड़ा, व्यवसाय को छोड़ा, और क्या करते हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो भक्त, किसी को मारना पाप है, पर जब युद्ध शुरू होता है, एक देश दूसरे देश में युद्ध करता है, एक सैनिक लाखों व्यक्ति को मार देता है, फिर भी उसको मेडल प्राइज दिया जाता है, सरकार उसको मेडल प्राइज देता है, क्योंकि लाखों व्यक्ति को मारा, इसलिए ना मारना तो पाप है। पर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बड़े कठोर शब्द में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म को छोड़ो। फिर कौन से धर्म को छोड़े और कौन से धर्म को अपनाए? धर्म की परिभाषा क्या है? धारयते इति धर्म, जो हम धारण करते हैं वो धर्म है। आज मैं गौड़ीय संप्रदाय से बिलोंग करता हूं, गौड़ीय संप्रदाय की जो तिलक की रेखा खींचा हूं, उसकी यूनिफॉर्म पहना हुआ हूं, ओ गौड़ीय वैष्णव। पर इसी शरीर में यदि मैं रामानुज संप्रदाय का तिलक खींचू और रामानुज संप्रदाय का यूनिफॉर्म पहन लू, तो फिर मैं रामानुज संप्रदाय का बन गया। और इसी शरीर में यदि शैव संप्रदाय के तिलक की रेखा खींचू, फिर मैं शैव संप्रदाय के बन गया। तो वास्तविक धर्म क्या है? ना सवई वंशांग परो धर्म परो धर्म, धर्म से परे परो धर्म, सवई वंशांग परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सभी जीव का परम धर्म है, और ये सब धर्म है लौकिक धर्म। पति पुत्र सबका ड्यूटी अपना अपना है, सब धर्म मेरा धर्म में करता हूं, अर्थात मेरा ड्यूटी में करता हूं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म को त्याग दो, करके त्याग करके एकमात्र एकमात्र शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं त्वाम के तुमको, तुम्हारा तुमको सभी पापों से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सभी से तुमको मुक्ति दिला दूंगा, चिंता नहीं करो। अभय वाक्य भगवान कहते हैं। तो फिर हम छोड़ा, अरे तुम नहीं छोड़ोगे ऐसे तो छूट जाएगा, तुम छोड़ना भी नहीं चाहोगे ऐसे तो छूट जाओगे, नहीं जब वो मृत्यु आएगा कंधे पर लेकर के, राम नाम सत्य है उसी को बोलते हुए तो ले जाएंगे ना। क्या हम छोड़ना चाह, कौन व्यक्ति मरना चाहता है, कौन व्यक्ति परिवार को छोड़ना चाहता है? अरे नहीं छोड़ोगे फिर भी छूट जाएगा, इससे अच्छा है समय रहते हुए मन को उससे निकाल दे और प्रभु की चरण में डाल दे। ये मन ही कितने कितने युगों तक, कितने कितने जन्मों में खतरा का घंटी तो बजाया। मनोएव मनुष्याणाम कारण बंध मुक्षयो, दुख का भी कारण है और सुख का भी कारण है ये मन। इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। हे भगवान, मेरा ये जो मन है बहुत चंचल है, इतना चंचल है वायु से भी तेज भागता है, वायु को रुकना संभव है पर मैं मन को रुक नहीं पाता हूं। ठाकुर जी क्या करूं, कैसे ही मन को रुकूं? भगवान ने इसकी उत्तर में कहा, भगवान उवाच, असंशयं महाबाहु
मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
अभ्यास और वैराग्य विद्या, ये दोनों बातों से मन कभी एकाग्र हो सकता है। इसलिए बार बार मन चले जाए, बुद्धि से उसे खींचो और फिर अपनी जगह पर बैठाओ और क्लियरली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिह्वा इसकी उच्चारण करे और कर्ण इसको श्रवण करे। ये दोनों के माध्यम से मन आज नहीं सही, आने वाला दिन में रुक भी जा सकता है। इसलिए अर्जुन, तुमने जो पूछा वो सत्य है, असंशयं, इसमें कोई संदेह नहीं है। असंशयं महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम, ये मन को निग्रह करना बहुत कठिन है। मैं भी आपके साथ एकमत हूँ, किंतु मेरा ये सलाह मानो, दो बात करो। अभ्यासेण तू कौन्तेय, बार बार अभ्यास करो। जब हम छोटे थे, एक दिन चलने के लिए प्रयास करते थे, पिता और माता ने एक गाड़ी पकड़ाया, उसको पकड़ते पकड़ते गिरे, उठे, चलते चलते आज हम कितने सुंदर चल पाते हैं। ऐसे अभ्यास एक ऐसी चीज है, बार बार अभ्यास करो, बार बार। मन एक बार रुकेगा नहीं, मन तो चंचल है, मन रुकेगा नहीं। पर भगवान ने कहा अभ्यासेण तू कौन्तेय, बार बार मन को खींचो और अपने ट्रैक पर ले आओ। और विराग विद्या, 2000 ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य जीवन में है, बृहत व्रत को अपनाया है, कौपिन धारण, कसा कौपिन धारण करके आए हो, उन ब्रह्मचारियों को 5 सूत्र है विद्या का। ये भगवत विद्या को पढ़ने के लिए 5 चीज आवश्यक है, काकराबी, बकध्यायी, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी, गृहत्यागी, एतद् विद्यांच लक्षणम। ये विद्या के 5 लक्षण है। प्रथम लक्षण कहा काकराबी, जब श्लोकों को पढ़ो तो उच्च स्वर से पढ़ो, श्लोकों का पाठ उच्च स्वर से, उच्च स्वर से होना चाहिए। हाँ, उच्च स्वर से जब आप पढ़ोगे तब ये ब्रेन पर बैठेगा बुद्धि, तो श्लोक आपको कंठस्थ होने लगेगा। निम्न स्वर में पढ़ोगे तो ये बैठेगा नहीं, ये केवल सरस्वती ब्रह्मा जी की कृपा से ही हृदय पर बैठ सकता है। इसको पढ़ने के लिए का करा भी, कौवा जैसे पढ़ो, का का उच्चारण करो, कं खं, दुभ दुभ, उद्गार, नहीं तो ये झुकताक्षर जीभ में आएगा नहीं, आलस्यता जीभ में है, जीभ की आलस्यता को काटना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब जब आप कौए जैसे पढ़ोगे तब ये हृदय में बैठेगा। का करावी बकध्याई, ध्यान होना चाहिए बगुला जैसा। बगुला को देखा, बगुला पानी के अंदर एक पैर में खड़े होकर के एकदम तन्मयता से देखते रहता है, मछली जाते ही कूप मार लेता है, ऐसे ही एकाग्र चित्त से। परंतु ठाकुर जी की ध्यान बगुला जैसे नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी की ध्यान बगुला जैसे नहीं होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण नहीं होना चाहिए। परंतु ये विद्या के लिए कहा गया है। तो बकरावी, काकरावी, बकध्यायी, स्वान निद्रा, बहुत अत्यधिक भोजन करके सोगे तो गाढ़ निद्रा में चले जाओगे। स्वान निद्रा शब्द का अर्थ है कुत्ते को थोड़ी सी आवाज दो वो जग जाता है, ऐसे ही सोना चाहिए। गहरी नींद वाले भी भक्ति का बाधक है, स्वल्प निद्रा। और अल्पहारी, एकदम आकंठ भोजन नहीं करना, आकंठ भोजन नहीं करना। आकंठ भोजन से क्या होता है, शरीर सुस्त हो जाता है, हमारा ध्येय से हम भटक जाते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार पेट की जो 4 भाग है उसमें 2 भाग भोजन से भरना चाहिए, 1 भाग जल से और 1 भाग वायु से, तब स्वस्थ शरीर रहता है जीव के लिए। किंतु कभी कभी बहुत काम करते हुए एक साथ हम बहुत भोजन कर देते हैं, इसलिए कभी कभी स्वस्थता भी शरीर को ग्रास कर लेता है, सो भी जाते हैं। तो इसलिए स्वल्पहारी, गृहत्यागी, गृहत्यागी शब्द का अर्थ है आसक्त की वातावरण से दूर रहना चाहिए। ये जो पांच लक्षण है ये विद्यार्थियों के लिए है, तब विद्या बहुत सुंदर बैठता है। हरे कृष्ण। पता नहीं चला लेट हो गए हम लोग, आधा घंटा लेट हो गए, क्षमा चाहता हूं। आज तो प्रसाद 3 बजे होगा अनाउंसमेंट हुआ था ना, वो अलग है, अलग प्रसाद। प्रसादेस्तु प्रसन्नता, प्रसाद के समान भी आनंद कुछ नहीं है। राधा राजबेरी प्रसाद सबसे महान है। हाँ? हम लोग जब नए नए भक्त में थे।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि मृत्यु के समय 1000 बिच्छू काटने की तकलीफ होती है। मुझे बिच्छू काटा, मैं अनुभव किया हूँ, एक बिच्छू काटने से बहुत तड़प होती है। लेकिन जब भक्त को यही होता है, जो 1000 बिच्छू काटने वही तड़प दे, भक्त को भी और अभक्त को भी, इसमें क्या अंतर है?
भक्त सह सकता है। मैंने उस दिन भी एक उदाहरण दिया था, भक्त और अभक्त में अंतर क्या है? वही हाथ नाक कान मुख सब है, पर बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अंतर क्या है? हंस श्वेत बक श्वेत को भेद हंस बकयो, निरक्षीर विभेदेशु हंस हंस बक बक। बगुला भी सफेद है, हंस भी देखने के लिए सफेद है ना? पर पानी और दूध को विभाजन करने का जब समय आ जाए, बगुला देखते रह जाता है और हंस जो है पानी को निकाल करके दूध को पी लेता है। हजारे बिच्छू तो काटता है, ये सत्य है, पर ददामी बुद्धि योगम। भगवान कहते हैं उस भक्त जो मेरे चरण में लगा है उसको मैं बुद्धि उस समय जागृत होकर दे देता हूं, तो गोविंद के गीत गा लेता है। सहन करने की जो शक्ति है वो भक्त में होता है, अभक्त में नहीं। अभक्त भटक जाता, ठीक है ना?
हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी, आपने शुरू में बताया नित्यम भागवत सेवा के बारे में,
क्या
नित्यम भागवत सेवा? तो अगर कोई जैसे प्रवचन में बैठ के सुन रहा है भागवत, और कोई ईयरफोन में सुनता है, कई लोग को बोला जाता है कि आप आइए, तो लोग बोलते हैं नहीं हम घर में पढ़ लेंगे, तो ये तीनों का फल सेम ही है या तीनों में अलग अलग?
ऐसा नहीं है। भगवत कथा में ध्यान को भ्रष्ट कर लेना अपराध माना गया है। अगर आप एकाग्र चित्त से ठाकुर जी कथा सुनते हो, इसलिए जो सेलफोन इत्यादि है उसको बंद कर देना चाहिए, कम से कम जब तक हम, हाँ जो लोग मैनेजमेंट पोजीशन में है कुछ चीजों की ध्यान रखना पड़ता है। तो आजकल की साधन भी बहुत हो चुके हैं, तो कोई हमको दिखा दे बा कोई बता दे जो कुछ इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज जब आप कथा कीर्तन में भाग लो, क्योंकि यही तो ध्यान है, यही तो भक्ति है। और भक्ति विव्रत हो जाए, क्या पता निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्ध भविष्यति। भक्त जब हम लोग उस समय 95 न्यू भक्त थे, हमारा राधा कृष्ण प्रभु उनमें से आज के पुराने भक्तों में इधर है उन दिनों का, तो एक भक्त आया। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, यही मंदिर है राधा राजबेरी मंदिर में 4:30 बजे का समय था, मंदिर खुल गया, और उस समय इक्ष्वाकु दास बोले के एक ब्रह्मचारी थे, बाद में उन्होंने विवाह किया, वो हमारे निम्बार्क प्रभु की जगह पर बैठ के वो देते थे चरणामृत। और वो व्यक्ति आया, पेंट शर्ट पहना हुआ था, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, और जाकर के इक्ष्वाकु प्रभु को बोला थोड़ा तुलसी दो, तो उन्होंने दिया। बोले नहीं नहीं, राधा राजबेर उन उधर से। तो उस भक्त ने एक गुलाब के फूल और तुलसी राधा राजबेर की चरण से उस भक्त को दिया, और वो भक्त पीछे नहीं मुड़ा। अब देखो भारतवर्ष में हम जानते हैं ठाकुर जी को पीछा करके नहीं जाते, हम धीरे धीरे आ जाते हैं, परंतु वो उसको लेना चाहा, हाथ में चरण मृत तो ले लिया, पर वो जो प्रसाद दिया उसको लेकर के वो पीछे आ रहा था, उसकी पैर फिसल गया, बीच में गिर पड़ा और प्राण चला गया। एक सेकंड में इसी मंदिर में, तो बताओ निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्ध भविष्य थी, ये श्वास का क्या भरोसा है कब चला जाए। इसलिए जब ठाकुर जी के सामने रहो तन्मयता से रहो, एकदम एकाग्र चित्त से, गोविंद और आप कोई ना हो, इसके लिए बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास नहीं करोगे तो कैसे होगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हम ड्राइविंग विदेश में करते हैं तो कम से कम 65 माइल पर आवर में गाड़ी चलती है, अगर एक पल ध्यान भ्रष्ट हुआ 10 गाड़ियां एक साथ पीट जाती है। तो जब हम भगवान की ओर जाएं, भक्त जब अपनी भक्ति को ठाकुर जी के साथ जोड़ लेता है, पर वहां पर भगवान और भक्त के बीच कोई नहीं आ सकता। इसलिए भक्ति महान है। भक्ति करने वाले व्यक्ति को भगवान संभालते हैं, कैसे ना, जैसे कैट बिल्ली की बच्चा को देखा, बिल्ली की बच्चा अपनी ताकत से अपनी मां को नहीं पकड़ता, अपनी मां अपनी दांतों से बिल्ली के बच्चे को एक जगह पर उठा करके दूसरी जगह पर ले जाता है। पर भक्ति को छोड़ के जितने योग प्रोसेस में लगे हुए हैं ये बानर के बच्चे के समान होते हैं। बानर के बच्चा क्या करता है, वो अपनी ताकत से मां को पकड़ रखता है पेट के नीचे अपनी ताकत से, और जब मां एक छलांग मारती है कभी कभी वो नीचे गिर जाता है। यही तो हुआ। 20,000 साल तपस्या करने के बाद विश्वामित्र मुनि ने तपस्यारत रह पाए, उनकी तपस्या टूटी। सौभरी ऋषि जब प्रतिभा में आ गए, संसार के लोग उनके पीछे पड़े, वो जमुना के जल के अंदर डूब गए। कितने हजार साल तपस्या किए, पर एक दिन उन्होंने देखा एक मछली के परिवार एक दूसरे से आनंद में घूमते, उससे उनके हृदय में वासना की जागृत हुई और राजा मांधाता के पास आकर के बोले, मुझे एक कन्या चाहिए तुम्हारा। राजा मांधाता को मालूम था ये ऋषि अभिशाप दे देगा, ना करूंगा। तो उन्होंने बोला, आप मेरे अंतपुरी में जाइए, जो कन्या आपको पसंद कर ले आप उससे विवाह कीजिए। तो अंतपुर में गए, बोले मेरी बुढ़ापा को देख करके ये चाल चला, वो अपनी अपनी देह को कंदर्प बना दिए और अंदर गए। मांधाता के जितने कन्या थे सब उनसे शादी कर डाले। क्या रह पाए, च्यवन ऋषि का क्या हुआ। इसलिए भक्त भगवान की कृपा पात्र है, भगवान की कृपा पात्र। भक्ति में इतनी शक्ति है जो भगवान बंधते हैं। मैंने उस दिन पद्म पुराण का एक श्लोक आप लोगों को सुनाया था, सकल भुवन मध्य निर्धना तपि धन्य निवसन्ति हृदि तेषां श्री हरिरि भक्तिरेकः हरिरपि निज धामं सर्वथा विहाय प्रविशन्ति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनब्ध। इसलिए ठाकुर जी ने कहा, ये एकादश स्कंद भागवत में श्लोक आता है, न रोधयते मांग योगम न सांख्यम न धर्म एवच न स्वाध्याय तपह त्याग निष्ठापूतं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमा यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंग अपहोहिमा। सभी संगों में मैं जब आता हूं ऐसे निकल जाता हूं, परंतु जब सत्संग में किसके हृदय में उतर जाता हूं निकालने के बाद में नहीं जाता। इसलिए ठाकुर जी सब साधन दे देते हैं। भक्ति ठाकुर जी की बस में नहीं है, और भक्ति की रेखा तो केवल भक्तों की कृपा से हो सकता है। इसलिए भक्त संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्रे को लवे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। गंगा पापम शशि तापम
कल्पम दैन तरु तथा दैनम तापम तापम च दैनम च हरेत साधु समागमे। गंगा जी में जाओ स्नान करो, गंगा पाप को ले लेती है, हर लेती है, धो देती है गंगा पाप। शशि चंद्रमा जब उदय हो जाए सारा दिन की गर्मी चली जाती है, शीतलता प्रदान कर देती है, चंद्र की ज्योत्सना से शीतलता आ जाती है। और कल्पतरु के पास कुछ कल्पना करो, कल्पतरु भर देता है झोली में, जो मांगो दे देता है कल्पतरु बांछावट। किंतु ये तीनों एक एक काम करने में समर्थ है, गंगा पाप को, शशि गर्मी को और कल्पतरु दरिद्रता को। किंतु पापम तापम चौदैनम च, ये तीनों को तीनों समाप्ति हो जाता है जब साधु के आगमन घर में तुम्हारा सामने हो जाए। इसलिए सत्संग सत्संग बहुत महान है, संत साधुओं की सेवा करना बहुत महान है। और कभी कभी हम देखते हैं हमारे जो छोटे वर्ग के भक्त लोग हैं, कभी कभी बड़े भक्त डांट देते हैं, हृदय जल जाता है, आज बड़े डांट पड़े हमें, ये प्रभु अच्छे नहीं है ना, थोड़ी सी बुद्धि से विचार करो। देखो एक कहावत है कि अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी जिसको अनुभव है, जिसको अनुभव है, हमारे पास अनुभव की अभी कमी है ना। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, दूसरे क्यों दोष दिए बगैर पॉजिटिवली सोचो, आज हो सकता है और कुछ होने वाला था तो इस प्रकार से निकल गया, ठाकुर जी ने कृपा कर दिया, तो पॉजिटिव सोचोगे, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट गिव ऑलवेज गुड रिजल्ट। ओके, नेगेटिव थॉट अच्छी बात को भी बिगाड़ देता है। अभ्याह बहुति कल्याणम विविधंग वाक् सुभाषिता सैव दुर्भाषित राजन अनर्थाय उपपद्यते। हे राजा, अनर्थाय उपपद्यते, बड़ा अनर्थ कर देता है। अच्छी बात को यदि कहना नहीं आया, कड़वी ढंग से बोल दिया, उसकी परिणाम बिगड़ जाता है। और बहुत बुरी बात को अगर अच्छी ढंग से हम प्रस्तुति करें, उसकी परिणाम अच्छा भी निकल सकता है। इसलिए इसी का नाम ट्रेनिंग है, इसका नाम अभ्यास है। तो बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करोगे एक ना एक दिन सिद्धि को अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि हमने साधना को ठीक से साधा है ना। ये मनुष्य का जीवन वीणा के तीन तार के समान है, जो माता सरस्वती वीणा बजाती है ना, नारद मुनि वीणा बजाते हैं ना, उसमें तीन तीन स्रोत होता है, एक है बाल्यकाल, एक है यौवन और एक है बुढ़ापा, है ना। बाल्यकाल आवाज नहीं निकल सकता, एकदम ढीला पड़ गया है, तो स्वर कैसे निकलेगा, वीणा की छिड़ो स्वर नहीं हो सकता, क्यों, जो तार है वो ढीला है, वो ठीक पॉइंट पर टाइट नहीं हुआ है। बल्ले क्रीडन का सकता और आया यौवन, यौवने विषयान मुखा, यो चंचलता आया, और बुढ़ापा जो है वो बहुत टाइट हो गया तार, हाथ उठ नहीं सकता, पैर चल नहीं सकता, आ ऊ सब शुरू होता है। यौवन एक ही चीज तो है जिसमें हम सब कुछ सुगमता से कर सकता है, इसलिए भक्त जिसने जवानी को संभाला उसने बुढ़ापा को संभाला। ये संसार के पास जवानी को आनंद देने के लिए लाखों साधन है, पर बुढ़ापा को बिताने के लिए कोई साधन नहीं है, वो केवल गोविंद के पास है। इसलिए विष्णु पुराण में ये प्रहलाद महाराज ने दैत्य बालकों को बड़ा सुंदर बात कहा, बाल्ये क्रीडन का सकता यौवने विषयान मुखा अज्ञाने अंत सकताश्च बार्धक्यम समुपस्थितम तस्मात बाल्ये विवेकात्मा एतत् श्रयसे सदा बाल्य यौवन वृद्धार्दयी देह भावैर संयुतः। ओ दैत्य बालक, वो बालक, वो यौवन, वो बुढ़ापा की बात को छोड़ करके अभी अभी इसी समय से गोविंद की नाम स्मरण कर लो। बालके मोलो बालके मोरो बोलो करो बेलो हूँ गोविंद सुमर। किसने जानता है काल क्या होने वाला है, अब इसी समय से भगवत भक्ति को अपना लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भक्त वृंद की जय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी त्रिल प्रभुपाद की जय।